विरतो दुश्चरितात् शांतो न समाहिता शांत मनसो वापि या एनम आत्मुयात। इस मंत्र में उपनिषद मंत्र है ये न अविरतो दुश्चरितात्। जिसके चित्त में वैराग्य की भावना पैदा नहीं हुई है, संसार के अनेक कार्यों से राग बना हुआ है और लोक व्यवहार में विशेष आसक्ति रहती है, जिसके अंदर वैराग की भावना उदय नहीं हुई है या वैराग पैदा नहीं हुआ है, उसका मन शांत नहीं होता, अभ्यास में भी नहीं लगता, जहां लगाना चाहता है वहां नहीं लगता है, बेलगाम के घोड़े की तरह बना रहता है उसका मन। तो जब वैराग हो जाता है, अनायास बिना प्रयत्न के मन स्वाभाविक ही शांत बना रहता है, क्योंकि राग बहुत सूक्ष्म है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हरिद्वार के कुंभ पर एक महात्मा मिला, 60 वर्ष से संन्यास धारण किया हुआ था, 30 वर्ष पहले वो गृहस्थ आश्रम में रहा था, तो पत्नी मर गई, उसको वैराग हो गया, संतान थी नहीं, घर बार छोड़ करके संन्यासी बन गया। तो एकांत में सदा रहता था, शहर गांव में नहीं ठहरता था, भिक्षा आबादी से एक वक्त ले आता था। एक उसके पास गोदड़ी थी, पता नहीं 50 टाकियां लगी हुई होंगी उसमें, और 2 लंगोटी थी बस, ये उसकी संपत्ति थी, एक तुम्बा था मांगते खाने का। तो मेले के दिन थे, मैं भी इस भावना को, मैं कह चलो कहीं संतों महात्माओं के इस अवसर पर, कुंभ पर बहुत महात्मा आया करते हैं, किसी के दर्शन करेंगे, किसी के समाधि करेंगे, तो मैं चलता रहा, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो उस बहुत वृद्ध महात्मा को गंगा के किनारे बैठे देखा, अकेले को, बहुत दूर, सबसे दूर, तो सब सरोवर से भी 3 मील आ गया। मैं कह ये महात्मा अच्छा हो सकता, मैं भी उसके पास जाकर के बैठा। तो अभी मैं बोला नहीं कुछ, जो भिक्षा लाया था वो मांग करके, तो उसको उसमें परने में बांधी हुई थी, 2 परने भी थे भिक्षा मांगने की, एक परना था एक तुम्बा था, तो वो उस परने में भिक्षा थी और गंगा में ऐसे खो रहा था उसको, उसका रस नमक घी वी सब निकल गया है। फिर उसने धो धा करके और वो भिक्षा, मैं तो प्रणाम करके वो उसकी हरकतें देखता रहा और कुछ नहीं कहा, तो उसने वो अपने तुम्बे में डाली भिक्षा। फिर कहने लगे मैं परांठे ले गया था बना करके, क्या महाराज थोड़ा ये भी ले लो। मैंने लगे नहीं देखा, मैंने क्या लेना, ये ही बहुत है, मैं तो आपको देना चाहता था इसमें से कुछ। लेकिन नहीं प्रांते हैं कि देखो, मैंने तो आपके सामने प्रांठों में तो घी लगा होगा, बहुत पंजाबी तो घी बहुत खाते हैं, तो ये मेरे से हजम भी शायद ना हो रहे, अब फिर ये धो के खाता हूँ मैं, तो ये सख्त चीज इसकी है। तो खैर हम दोनों खा पी ली, फिर मैंने उनसे बात छेड़ी, मैं कह महाराज आप कब से साधु बने हो, 7 वर्ष क्या क्या उपलब्धियां आपने की, वैराग्य की तो आप पराकाष्ठा सी पर पहुंचे हुए हो, तन का भी आपको कोई बहुत राग नहीं है, एक गुदड़ी रेगी है, पैर भी आपके नंगे जूते आदि भी नहीं है, और बड़ा आपका शुद्ध पवित्र जीवन लगता है, आपको तो बहुत विशेष उपलब्धियां हुई होंगी। क्या खाक उपलब्धियां होनी थी, धन का त्याग किया, यहाँ से तुम पेशावर का रहने वाला है, पेशावर तक मेरे रास्ते में सोने की मोहरें बिछा दो तो मैं उनको ठीक रिये समझ करके कुचलता चला जाऊंगा, कोई उनसे मुझे राग लेने की प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। वस्त्र ये गोदड़ी है, चाहिए 36-40 वर्ष से होगी, जब कहीं टूट फूटती है, कहीं चिथड़ा बिथड़ा पड़ा मिल जाता उसको धो लेता हूँ, और एक सुई धागा भी रखा हुआ है सी लेता हूँ। तो ये मेरी स्थिति है, वस्त्रों की भी संग्रह कुछ नहीं रखता, आबादी से 3 मील दूर रहता हूँ हमेशा, गृहस्थियों के साथ कोई संपर्क नहीं होता, भिक्षा चला जाता हूँ, पर ऐसे स्थानों पर मैं ठहरता हूँ जो तीर्थ स्थान होते हैं, प्रयागराज हुआ, ये हरिद्वार हुआ, और जहाँ क्षेत्र वेत्र भी होते हैं, बिना याचना के अन्न मिल जाता है, भिक्षा मिल जाती है, ऐसे कभी कभी ग्रामों के निकट भी ठहर जाता हूँ। तो कभी कोई संग्रह नहीं किया, कभी किसी से संपर्क नहीं, बैराग भी बड़ा बनाए रखता हूँ, पर पत्नी का अनुराग नहीं जाता है, कभी कभी उसके सुखों की स्मृति आ जाती है। 60 वर्ष की इतनी कठिन साधना से ये आते हैं, बीवी को लेकर के ज्ञान घोट के उनको पिला दें और फिर वहीं अपना गद्दी पर जा रहे थे। 60 वर्ष के तो महात्मा की ये स्थिति थी, तुम्हारे मुझे भी धोखे में रखते हैं और आप भी धोखे में पड़े हुए। जिसमें वैराग की भावना पैदा नहीं होती तो उसका मन समाहित नहीं होता। दुष्चरिता, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता, विशुद्ध चरित्र के जो होते हैं उनका भी मन शांत और समाहित हुआ करता है, इसलिए मनुष्य चरित्रवान होना चाहिए, अच्छा चरित्र हो, सब प्रकार के उसके सदाचारी भी हो, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, सब उसके जीवन की चरित्र की प्रशंसा करें, कोई किसी प्रकार का धब्बा कलंक उसके जीवन में ना लगा हुआ हो, जिसका चरित्र शुद्ध हो, न अशांत हो। और जो परेशान बने रहते हैं बिना मतलब ही, अपने आदतों से, अपने कामों से, अपने व्यवहारों से, अपनी गलतियों से परेशान बने रहते हैं, बहुत आते हैं हमारे पास परेशान मन वाले, तो ऐसे लोगों का भी मन शांत नहीं हुआ करता। कहते फिर कौन उसको मिलता है, कौन आत्मा को जानता है परमात्मा, कहते शांत मन सो वापी, जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया है, या एनम आपनुया, वो उस भगवान को या आत्मा को प्राप्त करता है। तो मंत्र ने बहुत अच्छा ये उपदेश दिया है, अगर इस प्रकार जीवन बनाया जाए तो तब प्रकार सब प्रकार की सफलताएं हो जाती हैं। और ये तो बहुत ज्यादा ज्यादा इतनी देर जो अध्ययन करना होता है, ऐसा भी आता है उपनिषदों में बहुत से संवाद आते हैं, महाभारत में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत से संवाद आते हैं, उत्तंक ब्रह्मचारी गौतम के आश्रम में 90 वर्ष रहा और गुरु के यहाँ लकड़ी ढोता रहा रसोई की, 90 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रह करके, कभी यहाँ तो कहते हैं जो आता है कि मुझे घुट के पिला दो अलग ही प्राइवेट रूप से, उसने कभी ये जिज्ञासा नहीं करी, महाराज मैं 90 वर्ष से आपके संपर्क में रह रहा हूँ, मुझे आपने कोई विशेष उपदेश नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं सिखाया, कोई कुछ नहीं किया। आया था अध्ययन करने के लिए ब्रह्म विद्या, वहां सब कुछ देखता सुनता करता रहा, गुरु की सेवा करता रहा। तो एक दिन बड़ा भारी भार लेकर के लकड़ियों का आया था, जटाजूट था। तो जब वो गुरु के द्वार पर रसोई के बाहर आनकर लकड़ियों का भार फेंकने लगा तो उसकी जटाएं लकड़ियों में उलझ गई, लकड़ियों के भार में जटाएं उलझ गई, तो उसने जोर से जो फेंका उसके साथ ही वो भी गिर पड़ा। अपने को संभाल नहीं सका, आयु बड़ी हुई थी तो उसके साथ ही गिर पड़ा। जब बाहर से आवाज आई तो गौतम की एक कन्या थी, लड़की युवावस्था की, झट दौड़ करके आई और आए देखा कि उत्तंक बहुत दुखी है, रोना चाहता है। उसने दोनों हाथों की अंजलि उसकी आंख के आगे लगा दी कि इतना तपस्वी, इतना ऊंचा महान आत्मा है, इसके आंसू ये भूमि पर नहीं गिरने चाहिए, ये दग्ध हो जाएगी। ऐसी उसकी भावना थे उसके आंसुओं को, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारिणी थी, एक तरह से गुरु के यहां रह रही थी। उसने अपने अंजलि में आंसुओं को धारण किया। थोड़ी देर के बाद उसी टाइम में गौतम भी आ गए कहने, तो उसने भार बार जटाएं लड़की ने खोल दी थी और वो भार हटा दिया था, और ये कुछ बहुत बड़ा रुष्ट दुखी सा हो रहा था। और गौतम कहने लगे, क्यों बेटा, क्या बात है, क्यों रोए तुम, कैसे तुम्हारी आंसू आए? तो कहने लगा, गुरु जी, आपके चरणों में रहते हुए, आपकी सेवा करते हुए मुझे 90 वर्ष हो गए, और मेरे साथ के ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी, वानप्रस्थी सब ब्रह्म विद्या अध्ययन कर कर करके, पढ़ लिख करके सब चले गए, और मेरी तरफ आपने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, मुझे कुछ आपने बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, और इतने वर्ष से मैं आपके साथ। अच्छा, तो क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो बेटा, हमारा तो ध्यान था, तुम अपने ही घर के ही आश्रम के, हम तो इस बात को भूल ही हुए थे। अच्छा, तुम तत्व ज्ञान चाहते हो? हाँ, आपकी कृपा हो गया था। अच्छा, बैठ गया, बस मस्तिष्क पकड़ गया, समाधि करा दी। 7 दिन समाधि लगी थी और तत्व ज्ञान हो गया, विवेक हो गया। तो जब वो विदा होने लगा तो गौतम कहने लगे, उत्तंक, भाई जहां मैंने अपनी ब्रह्म विद्या, अपनी निधि, अपनी संपत्ति तुझे दी है, वहां मैं अपनी ये कन्या भी तुझे समर्पण करना चाहता हूं। तो अपनी बेटी को भी पत्नी के रूप में उत्तंक को प्रदान कर दिया। तो ये तो हुआ दृष्टांत। दारष्टांत इसका यह है कि प्राचीन काल में बहुत काल तक इस विज्ञान की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते आए, तो शनै शनै तप करते करते अंतःकरण की पवित्रता होती रहती है, अनेक प्रकार के दोष क्षीण होते रहते हैं, कुछ गुरुजनों के संपर्क से, कुछ वहां के सदाचार से, कुछ वहां के अच्छे जीवन से, अच्छे वातावरण से, अच्छा देश होता है, अच्छा काल होता है, अच्छा सत्संग होता है, और एकांत शांत स्थान होता है। तो यहाँ स्वाभाविक ही वह पवित्रता शरीर में, मन में, अंतःकरण में आती रहती है, और फिर अध्यात्म ज्ञान के योग बनता है। इस आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ दो प्रकार की भूमि वर्तमान है। एक तो सामने ये सड़क है, वो भी भूमि है, और एक ये भूमि है जहां साग सब्जी बनाई बोते हैं। भूमि को पानी देकर जोत बो करके, जोत बह करके अच्छी तरह उर्वरा जब उसको बना करके उसमें बीज डाला जाता है, उसमें अंकुर पैदा होता है और फिर उससे सब्जी या और फलदार वृक्ष आदि पैदा होकर के फल का हेतु बन जाते हैं। अगर वही बीज हम इस सड़क पर फेंक देते हैं, डाल देते हैं, तो उनको चिड़िया, कौवे और जानवर चुप चुप खा जाए। तो ये जो साधना का समय है, ये एक प्रकार से साधना के द्वारा अंतःकरण रूपी भूमि को उर्वरा बनाना होता है। और ये जो आसनों की मर्यादा बनाई थी, तीसरा आसन वानप्रस्थ आसन इसके लिए रखा था। ऐसे कम दृष्टांत मिलते हैं जिनको बाल्यकाल में, ब्रह्मचर्य काल में तत्व ज्ञान हुआ हो, ऐसे कम मिलते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं कि तीसरे आश्रम में जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से तृप्त होकर के आए हैं और बाल्यकाल में, ब्रह्मचर्य काल में जिनको आत्म विज्ञान की जिज्ञासा हो गई है, तो ये लोग तो सीधे ही, इनके लिए तो किसी आश्रम का विधान नहीं है। एक प्रकार से एक ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये तो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो कुछ संसार के भोगों की कामना लेकर के आए हैं और जो गृहस्थाश्रम में चले गए हैं, 25 साल 30 साल गृहस्थाश्रम का उपभोग कर करके संसार की परंपरा चला करके फिर तीसरे आश्रम में विधान है, इनके लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति का वानप्रस्थ आश्रम। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य काल में तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो तृप्त होकर के आए हुए होते हैं, और जो गृहस्थाश्रम में रह करके आगे वानप्रस्थ में पहुंच करके तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी तृप्ति ज्ञान के गृहस्थाश्रम में हुआ करते। तो संसार के भोगों से तृप्त होकर के ही ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और ये फिर फूलता है, फलता है, सुख शांति और मोक्ष का देने वाला होता है। तो इसलिए बहुत साधना की आवश्यकता है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। इस जन्म के भी बहुत से संस्कार प्रधान प्रधान होते हैं और पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, तो प्रधान प्रधान संस्कारों का, अगर हम प्रधान संस्कारों के लिए कार्य क्षेत्र तैयार करते हैं भोग लेने के लिए, तब तो वो फल का हेतु बनेंगे। अगर प्रधान संस्कारों को हम उनके लिए कार्य क्षेत्र नहीं करते, अभ्यास से और वैराग से उन संस्कारों को, प्रधानों को विच्छिन्न करते हैं, ये उधार हैं बने हुए, अब तो अभ्यास और साधना के द्वारा हम विच्छिन्न करते हैं। तो विच्छिन्न करने के लिए आवश्यकता है प्रधान प्रधान संस्कारों को भी, वो भी भोग देने से कुंठित से होकर के ठहर जाया करते हैं। जब भोग का क्षेत्र तैयार करता है कोई मनुष्य, तब वो संस्कार स्वाभाविक ही, बहुत बार आपने भी देखा होगा कि जहां कुछ ऐसी चहल पहल की चीजें होती वहां जाते हो, पुराने संस्कार कहीं के अपने भी जाग आते हैं और उनके सुख समृद्धि आदि, उनके हाव भाव, उनके सारी बातों को देख करके, सब सुख आदि देख करके अपनी भी इच्छा हो जाती है उस काम करने के लिए, आदमी उसमें तत्पर हो जाता है। अगर तृप्ति हो किसी की तो कुछ होता रहे, कहीं उसकी फिर दिलचस्पी नहीं होती है। तो इसलिए ये जो प्रधान प्रधान संस्कार हैं, इनको भी ये प्रधान संस्कार उदार कहलाते हैं। ये भोग देने के लिए शरीर रूपी क्षेत्र में आए हुए होते हैं, उनके आधार पर इस शरीर का निर्माण हुआ और वो भोग देना चाहते हैं। अब ये तो हमारी, आपने मुझे 1000 रुपया दिया है, आप कह दो देखो महात्मा जी 1000 रुपए को आपने क्या नाम 5 साल में या 1 साल में खाना है, पूरा करना है। मैं अगर मैं चाहूं तो उसको 1 साल में भी खा सकता हूं और 5 की जगह 6 साल में भी खा सकता हूं और जुआ खेल करके 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं। तो जो 5 साल में मैंने परंतु ये तो मेरे ऊपर निर्भर है ना, आपने तो धन दे दिया मेरे भोग के लिए, पुण्य कर्मों ने या पूर्व जन्म के संग्रहों ने तो दे दिया हमें प्रधान कर्म भोग देने के लिए, शरीर भी मिल गया, प्रधान कर्म भी साथ में आ गया, अब भोगना न भोगना हमारी इच्छा का है। तो इस बात में मनुष्य को स्वतंत्र करता कहा गया है, यहाँ हमारी स्वतंत्रता है। तो यहाँ आवश्यकता विवेक की, बुद्धि की, सोच समझ कर करके वहां निर्णय ले, अपना निर्णय ना हो सके विद्वानों से निर्णय ले, दूसरों से निर्णय ले, तो तब उस कार्य क्षेत्र में तैयार। तो अनादिकाल से बहुत विभूति है, तो अब भी उपार्जन नहीं करोगे धन दौलत ऐश्वर्य तब भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई अनादिकाल के भी तो संग्रह संस्कार पड़े हैं ना, कोई ना कोई वो ऐसा निमित्त बना देंगे, साधन सब अपने आप ही आने करेंगे। ये जो संत महात्मा हमारे जैसे दूसरे कौन से धन आदि कमाने के लिए व्यापार करते हैं, सारे आते नहीं, पर आज धन दौलत मकान वगैरह सारी चीजें सारी विभूति अपने आप ही आने लगती है। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधान जो कर्म होते हैं उनको भी रोका जा सकता है, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, साधना के द्वारा, इनका तो कोई अंत नहीं है। अगर ये 10-5 प्रधान कर्म ना हो तो और भी तो प्रधान बहुत पड़े हैं ये भोग देने के, दूसरे इनके पीछे और आन टपकेंगे, पहले जन्म को जन्मों के भी खेच खेच करके आ जाते हैं जन्म में। तो इनको तो आपको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध करना होगा और जीवन में संतोष करना होगा कि बहुत अब तृप्त हो जाना चाहिए। अनादि काल से जन्म धारण कर कर करके भोगता चला आ रहा हूं, उन जन्मों में अगर तृप्ति नहीं हुई तो इस एक जन्म में तृप्ति होने की क्या संभावना है, और इस जन्म में भी इतने जीवन तक अगर अब तक तृप्ति नहीं हुई तो शेष जीवन में और क्या संभावना हो सकती। तो ये बातें हैं मन को समझाने की जो वैराग को दृढ़ बनाते हैं, अभ्यास को दृढ़ बनाते हैं। इस प्रकार की भावना योगी अभ्यास से लेकर के साधना में लगा रहता है तो उसका मन काम करता रहता, साधना भी सफल होती रहती है, ज्ञान का भी प्रादुर्भाव होता रहता, वैराग भी दृढ़ होता रहता।